మత్వాదేవం పతిశఖం యత్ర సాక్షాద్వసంతమం ప్రాయశ్చాపం నవహతి భయాన్మన్మథ షడ్పదజ్జయం శుభ్రో మయంగం ప్రహితనయనైః కమీలక్షేష్వమోఘైః తస్యాహాంభ చతురవన్వితాన అవిభ్రమరేవ సిద్ధః. అన్వయ. యత్ర మన్మథో ధనపతి సఖం దేవం సాక్షాత్ వసంతం మత్వా భయాత్ షట్ పజ్జయం చాపం ప్రాయో నః బహతి తస్య ఆరంభః శుభ్రభంగః ప్రహితనయనైః కామిలక్షేషు అమోఘైః చతురవనితా బిభ్రమైః ఏవం సిద్ధః. వ్యాఖ్యా. యత్ర అల్కాయాం మన్మథః కామః ధన్పతీశఖం కుబేరమిత్రం దేవ మహాదేవం సాక్షాత్ ప్రత్యక్షం నతు ప్రతిమారూపేణ వసంతం విద్యమానం సఖీ స్నేహాదితి శేషః మత్వా ద్రవజ్ఞాత్వా నతు దృష్టవేతి శేషః భయాత్ ప్రవర్భేత్ భితేః పురేవ హరతృతీయ నయనదాహత్రాసాదితి భావః షడ్పదజ్యం ప్రవర్భ్రమర మౌగికం చాపం ప్రవర్ధనుః ప్రాయః ప్రవర్ప్రాచ్యూర్ణే నవహతి ప్రవర్నధారయతి యదేవం కథంకారం తస్య కార్యసిద్ధిరత ఆహ శుభ్రభంగం ఇతి తస్య మన్మథస్య ఆరంభః వ్యాపారః కామీ జనవిజయరూప ఇతి భావః శుభ్రభంగ ప్రహితనయనైః భ్రూభం సహిత ప్రయుక్తష్టిభిః దృష్టిభిః కాలిక్షయేషు బ్రవర్ కామూకసరబ్బేషు అమోఘైః అనిష్ఫలైః సఫలైరిత్యః అర్థః చతుర్వణితా విభ్రమైః ఏవ విదగ్ధ లలనా విలాసైః ఏవం సిద్ధః నిష్పన్నః. సరళార్థ. హే మేక్, యస్యామలాకాయాం కామదేవః స్వమిత్ర ప్రిత్యా స్వరూపేణ నివసంతం మహాదేవం జ్ఞాత్వా తద్వితేః ప్రాయః స్వబంధూనూనం బిభ్రతిః తస్య వ్యాపారో విదగ్ధ తరుణీనాం కటాక్షైరేవ సంపన్నో భవతి. అనువాదః. హే మేక్, జిస్ అల్కా మే కుబేర్ కే మిత్ర మహాదేవ్ కో ప్రత్యక్ష రూప్ సే విద్యమాన్ జాన్కర్ కామదేవ్ భయ సే భవరో కీ ప్రత్యంచా వాలే అపనే ధనుష్ కో అక్సర్ ధారణ నహీ కర్తే హై ఉన్కా కామ్ భ్రూమ అంగో కే సాథ్ దృష్టిపాతో సే యుక్త ఔర్ కామ రూపీ నిశానో పర్ సఫల్ విదగ్ధ సుందరియో కే విలాసో సే సిద్ధ హో జాతా హై. టిప్పణీ. మన్మథః బరాబర్ మనం, మతః బరాబర్ చేతన, సంపదాదిభ్యః క్విప్ ఇతి క్విప్ సర్వాపహారీ లోపః, గమాదినాం క్వౌ ఇతి న లోపః, హరస్వస్య పితి కృతి తుక్ ఇతి తుక్, తుగాగం కృతే మన ప్లస్ క్విప్ బరాబర్ మతః, మథ ఇతి మథః, పంచాద్య చ మథ్ ప్లస్ అచ్ మతో మథః, మన్మథః, ధనపతి సఖం ధనస్య పతిః తస్య సఖా ధనపతి సఖః, తం రాజా అహ సఖీభ్యశ్చ. ఇస్ సూత్ర సే సమాసాంత్ టచ్ ప్రత్యయ హోకర్ సఖీ కా సఖ హో గయా హై. దేవం దివ్యైతి దేవః, తం పచాద్య చ దివ ప్లస్ అచ్ సాక్షాత్ అక్షేణ దృశ్యతే ఇతి క్విప్ సాక్ష ప్లస్ అత్ ప్లస్ క్విప్. యహ అన్వయ హై ఔర్ యహాం పర్ క్రియా విశేషణ హై. సాక్షాత్ ప్రత్యక్ష తుల్యయోః ఇత్యమరః వసంతం వసధాతుః లట్ ప్రత్యయ సర్త్రీ అర్థే భయాత్ तवर हेतौ पंचमी षट पदज्यम षट पदानि येषां ते षट पदाः दीरेफ पुष्पलिंग भृंग षट पद ब्रह्मरालयः इत्यमरः षट पदा एव ज्यायस्य सह तम यह चापका विशेषण है। मर्विम रोलंबमाला अर्थात भ्रमरों की पंक्ति कामदेव की प्रत्यंचा है। ऐसे कवि समय के अनुसार यह उक्ति है। प्रायः यह अव्यय पद है। वहति वह प्लस लट प्लस टीप संभ्रुभंग प्रहित नयनैः भ्रुवो भंगौ भ्रुभंगः भ्रुभंगेन सहितं सुभ्रुभंगम सुभ्रुभंगम प्रतिहानि प्रहितानि तादृशानि नयनानि येषु तैः कामिलक्षेषु कामोस्ति येषां ते कामिनः कामप्लसिनि लक्षयितुं योग्यानि लक्षाणि लक्ष्प्लस ऋच्प्लस यत् कामिन एव लक्षाणि तेषु अमोघैः नमोघाः तैः। अमोघ पद देने से कहीं कहीं कामदेव का धनु भी मोध हो जाता है। यह बात सूचित होती है चतुर्वनिता विभ्रमैः चतुराश्च ता वनिताः तासाम विभ्रमाः तैः। चतुर्पद से नृत्य गीत वादित और कामकला आदि में निपुण ऐसा अर्थ जानना है। कहीं कहीं चटुलव निता विभ्रमैः ऐसा पठांतर है। उसमें चटुला ब्रैकेट चंचला ब्रैकेट बंद ये वनिता विभ्रमस्तैः ऐसा विग्रह करना चाहिए। सिद्ध यानी सिद्ध प्लस कट। इस श्लोक में कामियों में लक्षत्व का आरोप होने से रूपक और कामदेव के भ्रमर रूप प्रत्यंचा से युक्त धनुष का धारण संबंध होने पर भी असंबंध की उक्ति होने से अतिशयोक्ति है। इन दोनों अलंकारों में अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार हो गया है। इस प्रकार दसवां श्लोक समाप्त हुआ। 11 बासश्चित्रम मधु नयनयो विभ्रमादेश दक्षमम पुष्पोद्भेदम सह किशलयक भूषणानाम विकल्पान लाक्षारागम चरण कमलाभ्या संयोगम चयस्यामेकः सुते सकलं बलाह मंडनं कल्पवृक्षः। अन्वय यस्याह चित्रं वासः नयनयोः विभ्रमादेशक दक्ष मधु किसलैः सुह पुष्पोदभेदं भूषणां विकल्पान चरणकमलन्यान संयोग्यं लक्षारागं च सकलं अवलका मंडनम एकः कल्प वृक्षसुते। व्याख्या साम्प्रतम कालाय कायाम भूषण चतुष्टयम् प्रतिपादयति वासैति यस्याम सालकायाम चित्रम सानेकवर्णम वासः सा वस्त्रम परिधेयमंडनम एतम् नयनयोः नेत्रयोः विभ्रमादेशदक्षः विलासोपदेशानिपुणम् मधु मद्यम देहस्थार्ये अंत भाव्यमेतत किसलैः पल्लवैः सह समं पुष्पोद्भेदं कुसुमा विरभावं द्वयत् चैत्यर्थं इदं कचधार्याम इत्य अवयवसेयं भूषणानाम अलंकाराणां विकल्पान विशेषान देहधार्यान इति निविशेषः तथा चरणकमलन्या संयोग्यं पादपद्म समर्पणाहं लाक्षारागं च अलक्तरागं च इदं च अंगरागादिव लेपनमण्डनोपलक्षणार्थं इत्थं सकलं सर्वं चतुर्विधं इत्यर्थ अवला मंडनम ललना प्रासाधन समूहम एकह एकाकी कल्पवृक्षः कल्पतरु सुते जनयति नतु नाना साधन संपादन प्रयास इति भावः। सरलार्थ हे मेघ यस्या यमलकायां मेकः कल्पवृक्षो ललना नाम मल कारणार्थः बहुवर्णं वशनं मध्यं सपल्लवं कुसुमोद्भेदं नैकविधानानि भूषणानि च चरणकमलयोः लक्षारागं चौत्पाद्यति। अनुवाद हे मेघ, जिस अलका में पहनने के लिए अनेक वर्णों वाले वस्त्र, नेत्रों से विलास का उपदेश करने वाली मदिरा, पल्लवों के साथ पुष्प, अनेकों अलंकार और धारण करन कमलों में चरण कमलों में समर्पण करने के योग्य महावर इस प्रकार स्त्रियों के सब अलंकारों को अकेला कल्प वृक्ष उत्पन्न करता है। टिप्पणी, अलंकार के चार भेद होते हैं, जैसा कि रसारक रसाकर में लिखा है, कचधार्यम देहधार्यम परिधेयम विलेपनम चतुर्धा भूषणम प्राहु स्त्रीणाम मनमंथ दैह सीकम। अर्थात केशों से धारणीय, शरीर से धारणीय, पहना जाने वाला और लेपन किया जाने वाला, इस प्रकार स्त्रियों के काम के उपदेशक चार प्रकार के अलंकार होते हैं। इस श्लोक में उन सभी का वर्णन किया गया है। चित्रम आलेख्याश आश्चर्ययोः चित्रम इत्यमरः वास वस्त्रामाच्छादनम वासः इत्यमरः। वस्त्र पहनना जाने वाला अलंकार है। बिभ्रमादेश दक्षम बिभ्रमाणाम आदेशः आंग उपसर्ग पूर्वक दिश धातु घञ् प्रत्यय आदेशः बिभ्रमादेशे दक्षम तत् मधु। मध्वासौ माधव को मधु माध्वी कमद्वयोः इत्यमरः। शरीर में विभ्रम को उत्पन्न करने के कारण मधु को अलंकार आदि की नाई शरीर से धारणीय अलंकारों में अंतर्भाव करना चाहिए। इसी प्रकार श्लोक कुमार संभव में भी है, नयनान्य ऋणानि ही घूर्णन्य वचनानि खलप चन पदे पदे आसति असति त्वयि वाणिमदः प्रमदा नाम घुना विडम्बना किसलैः सह के योग में तृतीय पुष्पोद्भेदम पुष्पाणाम उद्भेदतम उद पलस भिद पलस घय उद्भेदः पल्लव और पुष्प केशों में धारण किए जाने वाले अलंकार है। भूषाणाम भूस्पलस ल्युत भूषणम शरीर से धारण किए जाने वाले अलंकार है। चरण कमलन्या संयोग्यम चरणौ कमले ईव ब्रैकेट उपमित क्रम ब्रैकेट बंद ततुन्या सह ब्रैकेट षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष ब्रैकेट बंद तस्मिन् योग्यः तम ब्रैकेट सप्तमी तत्पुरुष ब्रैकेट बंद लाक्षारागम राज्यतेन इति रागः रंज प्लस घय करणे अर्थे लाक्षाराग इवतम उपभित क्रम लाक्षाराग महावर विलेपनम भूषका उपलक्षण है। विलेपनम भूषण का उपलक्षण है। अबला मंडनम अविद्यमानम बलम व्यासामता अबला। यहाँ पर नए अल्पार्थक है। अबला नाम मंडनम तत सूते सुड प्राणी प्रसव इति धातुर लट। एक कल्प वृक्ष ही स्त्रियों की संपूर्ण प्रसाधन सामग्री प्रस्तुत करता है। यहाँ अनेक साधनों के संपादन का प्रयास नहीं है। इस श्लोक में अलका वर्णन में अंग प्रस्तुत वासह आदि बहुत से पद सूते इस क्रिया के कर्म हैं, अतः तुल्य योगिता है। चरण कमलन्याह संयोगम इस पद में लुप्तोपमा है। इस प्रकार दोनों अलंकारों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार होता है। तत्रागारम धनपति गृहाद उत्तरेणास्मदीयम दूरालक्ष्यम सुरपति धनुस्रारुणा तोरणीम यस्योपान्ते कृतक तनयः कांतया वर्षितो मे हस्तप्राप्यस्तव कन्मितो बालमंदार वृक्षः। अन्वय। तत्र धनपतिगृहाद उत्तरेण अस्मदीयम् अगारम् सुरपति धनुस्रारुणा तोरणेन दुरातलक्ष्यम् यस्य उपान्ते मेकान्तया वर्धितः कृतकतनयोः हस्तप्राप्यस्तवकनम् मितो बालमन्दारवृक्षः अस्ति। व्याख्या। अलकावरणोन्नतरम् स्वभवनम् अस्याभिज्ञानम् प्रतिपादयति। तत्रेति तत्र तस्याम पूर्ववर्णितायाम् अलकायाम् मति भावः धनपतिः गृहाद कुबेरप्रसाद उत्तरेण उतरस्मिन् सन्निकृष्ट इत्यर्थः। अस्मदीयम् अस्माकम् अगारम् भवनम् सुरपति धनुस्रारुणा इन्द्रचापसुन्दरेण मणीयत्वादश्च भ्रमङ्कस् अत्वाचेति शेषः तोरणेन बहिर्दारेण दूरात् वित्रकृष्ट प्रदेशादपि लक्ष्यम् दर्शनीयम् आस्तितिशेषः। अनेनाभिज्ञाने दुरत एवम् ज्ञातुम् शक्य भावः अभिज्ञानान्तरम् आह यस्योपरान्त इति यस्य यानि अगारस्य उपान्ते पार्श्वदेशे उद्यान इति पाठान्तरे आकृड इत्यर्थः। मे मम कान्तया प्रियया न तु च इति जनेनिति भावः वर्धितः पोषितः कृतकनयन्तनयः कृतिसमुक्षः पुत्रत्वेन अभिमन्यमानः इति भावः हस्तप्राप्यस्तवकनम् इति करा अवच्चेयगुच्छ प्रवहीकृतः बालमन्दारवृक्षः बालकल्पवृक्षः आस्तितिशेषः। सरलार्थ। हे मेघ, तत्रालकायाम् कुबेरप्रसादात् उत्तरदिशि बहुवर्णतोरणरमणीयस्य स्मदीयम् भवनम् दुरादपि दर्शनीयम् आस्ते यस्य पार्श्वदेशे मदीयया दयितया सुत्तवत्पोषितो बालकल्पवृक्षो लक्ष्यते। अनुवाद। हे मेघ, उस अलकापुरी में कुबेर के प्रसाद के उत्तर भाग में अवस्थित हम लोगों का भवन इंद्रायुध के समान सुंदर बाहर के दरवाजे को दूर से देखा जाता है, जिसके पश्चिम में मेरी प्रिया से पुत्र के समान बढ़ाया गया और हाथों से तोड़े जाने वाले गुच्छों से झुका हुआ छोटा सा मंदार का वृक्ष है। टिप्पणी। धनपति गृहान पातिति पतिः पात प्लस मृतिः धनानाम पतिः तस्य गृहातान उत्तरेण। इस एन प्रत्यांत पद के योग में एन पा द्वितीया इस सूत्र से द्वितीया हुई है। गुहाः पुंसि च भुन्मनेव निकाय नीलायाः अमरकोश के इस प्रमाण के अनुसार गृह शब्द पुलिंग में नित्य बहुवचनांत है। उत्तरेण उत्तर शब्द से एनभ्यंतस्या मदूरे पंचम्याह इस सूत्र से एनप प्रत्यय हुआ है, अथवा उत्तरेण यह पद तोरणेन इसका विशेषण है। तब तो धनपति गृहात ऐसा पंचम्यंत पाठ मानना आवश्यक है। दिग्वाचक उत्तर पद के योग में अन्याराद इति दिक् शब्दाश्च उत्तर पदजाहि युक्ते इस सूत्र से पंचमी होती है। उस पक्ष में गृह शब्द नपुंसक लिंग की है। अस्मदीयम् अस्माकम् इदम् त्यादिदिनि च इस अस्मद् शब्द की बृहद वृद्ध संज्ञा हुई और वृद्धाश्च इस सूत्र से क्ष प्रत्यय हुआ है और आयनेयोनियः फड खच्छ्याम प्रत्यादिनीनाम इससे छक्के स्थान पे ईय आदेश हो गया है। अस्मद प्लस छ प्रकटियह प्रकटवन अस्मदियम कहने से मेरा ही नहीं किंतु पुत्री नाम पिता नाम का पितामहों की परंपरा से संबद्ध ऐसा अर्थ जाना जाता है। अगारम भवनगारम मंदिरम इत्यमरह सुरपति धनुश्चारुणा सुराणाम पति तस्या धनुः तद इव चारु तेन तोरणेन ते रणो स्त्री बहिरार्धम इत्यमरह। मणिमय होने से और आकाश चुंबी होने से भी तोरण को इंद्रधनुष समान सुंदर कहा है। लक्ष्यम लक्ष प्लस ऋच प्लस ऋत वर्धित वृद्ध प्लस ऋच प्लस कत कृत कृतक तनय कृत और कृतक कृत प्लस कन ब्रैकेट स्वार्थे ब्रैकेट प्रकृत्यर्थे ब्रैकेट बंद कृत शब्द से स्वार्थ प्रकृत अर्थ में कन प्रत्यय होकर कृतक शब्द बनता है। इसका अर्थ है बनावटी। कृतकश्चायसौ तनयः वाहितान्यादिषु इस सूत्र से अहिताग्नि आदि से आदि में पाठ होने से कृतक शब्द का पूर्व प्रयोग और उत्तर प्रयोग दोनों प्रयोग उपलब्ध होते हैं। कृतक शब्द का उत्तर प्रयोग देखिए सो अयम न पुत्र कृतकः पद्वी मृगस्ते ब्रकट अभिज्ञान शकुंतल चतुर्थ अंक श्लोक सोरा ब्रकट बंद हतस्त प्राप्यस्त वकनमित हस्तेन प्राप्या ते चते स्वबका तई नमित नम प्लस ऋच प्लस कत बाल मंदार वृक्ष मंदारश्चा असौ वृक्ष बालश्चा असौ मंदार वृक्ष। पांच प्रकार के देश वृक्षों में मंदार वृक्ष भी अन्यतम है। इस श्लोक में सुरपति धनुष चारुणा इस समस्त पद में लुप्तोपमा अलंकार है। वापि चास्मिन् मरकत शिला बद्ध सोपान मार्ग हेमैच्छन्नाः विकच कमलैः स्निग्ध वैदुर्य नालैः यस्यास्तोय कृतक वसतयो मानसं सन्निकृष्टं नाध्यास्यन्ति व्यपगत सूचस्त्वामपि प्रेक्ष्यहंसा। अन्वय अस्मिन् मरकत शिला बद्ध सोपान मार्ग स्निग्धै वैदुर्यतालैः हेमै विकच्छ कमलैः छन्नावापि च यस्याः तोये कृतव सतयोः हंसाः त्वां प्रेक्ष्य अपि व्यपगत सूचः सन्निकृष्टं मानसं न अध्यास्यन्ति। इतः परं श्लोकचतुष्टेन अभिज्ञानान्तरं प्रतिपादयति वापीति व्याख्या। हे मेघ ब्रैकेट बंद अस्मिन् यानी मदीय भवने मरकतशीला बद्ध सोपान मार्गा गरुत्तम मरत्नशीला निर्मिता अवतरण पथ पद स्निग्ध वैदुर्यनालय मर्सिर्ण विदुरत्ननालय स्निग्ध स्थाने दीर्घ पदस्य पाठांतरम ये मयि सवर्णे रत्नालयः विकच कमलैः विकसित पद्मैः कमल मूल मुकुलैः इति पाठांतरम तस्य पद्मकुंडलम मरलैः इत्यर्थ छन्ना व्याप्ता स्फिता इति पाठांतरम तत्र स्मृधा सित्यमरः इत्यर्थ वापि च दीर्घिका च अस्तिति शेषः यस्या वाप्याः तोये जले कृतवस्तयः विहित निवासाः हंसा चक्रांग त्वाम भवन्तम मेघम इत्यर्थः प्रेक्ष्य अपि दृष्ट्वा अपि प्रेक्ष्य स्थानि प्राप्य इति पाठांतरम तत्र आसाद्यत्यर्थः व्यपगस्तस्चु सुचः वित दुखाः संतः वर्षा काले अपि कलजुष्कला अभावादिति शेषः सन्निकृष्टं सन्निहितं सुगमं इत्यर्थ मानसं मानससरः न अध्यायस्यन्ति उत्कंठया न स्मरिष्यन्ति। सरलार्थ हे मेघ मद्भवने गरुत्तम मतरत्न कल्पिता अरोहण मार्गाः विदुरत्न मयनालय विकसित कनक कमलय व्याप्ति दीर्घिका चास्ते यत्र कृतनिवासा हंसास्त्वाम वीक्षायपि निकटस्थम अपि मानसरोवरम न स्मरिष्यन्ति। अनुवाद, मेरे भवन में जहाँ पर पन्नाओं से सीढ़ियों का मार्ग बना हुआ है, चीकने वैदुर्य मणि ब्रैकेट बिलौर ब्रैकेट बंद के नाल से युक्त विकसित सुवर्ण कमलों के व्याप्त बावली भी है, जिसके जल में निवास करने वाले हंस तुम्हें देखकर भी दुख न मानते हुए निकट स्थित मानसरोवर को भी याद नहीं करते हैं। टिप्पणी, अस्मिन् अधिकरणे सप्तमी मरकन शीला बध सोपान मार्गा मरकत शीला बध सोपान मार्गो यस्याः सा स्निग्ध वैदुर्यनालैः ब्रवर विदुरात प्रभवन्ति इति वैदुर्या मणियः विदुरायांच इति यम प्रत्यये यही प्रत्यये विदुरः प्लस यही वैदुर्याणां विकारा वैदुर्याणं वैदुर्य प्लस अण स्निग्धानि वैदुर्याणि नालानि एसाम तानि तैह वालवाय पर्वत को वैयाकरण लोग वैदुर पर्वत कहते हैं, विदुर नहीं। यह पर्वत रत्नों का उत्पत्ति स्थान है। विदुर पर्वत में उत्पन्न होने से वैदुर्य मणि विशेष को कहते हैं। वैदुर्य की प्रकृति विदुर होने से वैदुर्य कहना अशुद्ध है। हे मैह हे मनो विकारा हे मानी तैह हे मन प्लस अण विकचमलैह विकचानि च तानि कमलानि तैह छन्न छद प्लस ऋच प्लस कत कर्मणि अर्थे स्फिता पाठांतरमे स्फाय कतः स्फाय स्फी निष्ठायाम। इस सूत्र से स्फाय के स्थान में स्फी आदेश हुआ है। स्फिता का अर्थ है स्मृतिशालिनी, कहीं पर हे मई स्यूता ऐसा भी पाठांतर है, उसमें स्यूता का अर्थ संबद्धा है। कृतव सतय कृता वसयति यैह ते प्रेक्षः प्र प्लस इक्ष प्लस कत्वा प्रकट लेप प्रकट बन व्यपगतश्चुसुच अप प्लस गम प्लस कतः कर्तर्यर्थे प्लस टाप अपगता विशेषेण अपगता व्यपगता तादृशी सुक ये सामते। यह पद हंसा का विधेय विशेषण है। सन्निकृष्टम सम प्लस नी प्लस कृष प्लस कतः मानसम मनस आगतम मनस प्लस अण जिसे ब्रह्मा जी ने अपने मन से निर्माण किया था, उस सरोवर को मानस सरोवर कहते हैं। अध्यायांति आध्याप्यांति आंग उपसर्ग ध्यय धातु प्लस लट लिट प्रत्यय झी स्या चिंता स्मृतिर आध्यानम इत्यमरह। वर्षा काल में जल गंदला होने पर हम लोग हंस लोग मानसरोवर में चले जाते हैं, ऐसी कवि प्रसिद्ध है। परंतु अलकापुरी में यक्ष भवन में स्थित वापी ही निर्मल जल से संपन्न है, जहाँ के हंसों की मानसरोवर जाने की चिंता नहीं होती है। यह तात्पर्य है। इस श्लोक में विशेषोक्ति अलंकार है। इसका लक्षण है सती हेतौ फलाभावे विशेषोक्ति तथा द्विधा, अर्थात कारण के होने पर भी जहाँ फल नहीं होता है उसे विशेषोक्ति कहते हैं। यह भी विभावना के अनुसार उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता के भेद से दो प्रकार की होती है। प्राकृत में मेघ के दर्शन रूप कारण के होने पर भी हंसों का मानस सरोवर का आध्यान रूप फल के अभाव में विशेषोक्ति हुई है। उसमें भी विशेष गुण संपन्न वापी में निवास रूप निमित्त की उक्ति होने से उक्त निमित्ता विशेषोक्ति हो गई है। और लोकातिशय संपत्ति के वर्णन से उदात्त अलंकार है। इन दोनों का अंगांगी भाव होने से संकर अलंकार हो गया है। 13 समाप्त हुआ। श्लोक नंबर 14। तस्यास्तीरे रचित शिखरः पेशलैर इन्द्र नीलैः क्रीडाशलम् कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीयः मद्गेहिन्याः इति सखे चित्तसाकात्तरेण प्रेक्ष्योपान्तस्फुरित तड़ितम त्वाम तमेव स्मरामि। अन्वय। तस्याः तीरे पेशलैः इन्द्रनीलैः रचित शिखरः कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय क्रीडाशैलः हे सखे उपान्तस्फुरित तड़ितम त्वाम प्रेक्ष मद्गेहिन्याः प्रियैति कांतरेण चेतसा तमेव स्मरामि। व्याख्या। तस्या बराबर वाप्या तीरे तटे पेशल है पेशलई है सुंदरई है नीलई है इंद्र नीलाख्या रत्नई है रचित शिखर निर्मित कूट कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीय सुवर्ण रंभ परिवेश दर्शनीय क्रीड़ाशैल केली पर्वत अस्तिति शेषः हे सखे हे मित्रः उपान्तस्फुरित तडितम् प्रांतवील शीत विदुतम् त्वाम् भवन्तम् प्रेक्ष्यः दृष्ट्वा मद्गेहिन्याः मद्गृहिण्याः प्रियः अभिष्ठः इति हेतुना कांतरेण भीतेन तदनिष्ट संभवानयेति शेषः चेतसा चितेन तमेव क्रीडाशैलं भेव स्मरामि भावयामि नायन्यम् इति भावः पुनर्गृहे गमने तं क्रीडापर्वतं तया सहायप्यक्षतं पश्येयं किमित्यौत्सुक्यं ध्वनयन्ते। सरलार्थ। तस्या वाप्यास्तटे इन्द्रनीलमणिमयशिखरः कनक कदली परिधि दर्शनीय कैलिशेलो विद्यते हे मित्र प्रांत वीलति विलसित सौदामिकं त्वां विलोक्य तमेव मद्यसीता वलभं केलिशैलं चिंतयामि। अनुवाद। उस बावली के तीर में सुंदर इंद्र नील मणियों से बनी हुई चोटियों से संपन्न और सुनहली कदलियों के परिवेश से दर्शनीय और क्रीड़ा पर्वत हैं। हे मित्र प्रांत में चमकने वाली बिजली से युक्त तुमको देखकर वह क्रीड़ा पर्वत मेरी गृहिणी का प्रिय है। इस कारण मैं कातर चित्त से उसी का स्मरण करता रहता हूँ। टिप्पणी। पेशलैः चारौ दक्षे चपेशलः इत्यमरः रचन शिखरः रचितानि शिखराणि यस्य सः विहित शिखरः इति पाठे विहितानि कृतानि इत्यर्थः। इन्द्रनीलमणीययो से बने हुए शिखरों से संपन्न इन्द्रनीलमणि को मरकतमणि भी कहते हैं। यह नील वर्ण का होता है। कनक कदली वेष्टन प्रेक्षणीयः कनकस्य कदलयः तासाम वेष्टन तेन प्रेक्षणीयः प्रउपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु प्लस नियर प्रत्यय प्रेक्षणीयः। जिस प्रकार अलंकार के अलका में सुवर्ण कमल होते हैं उसी प्रकार सुवर्ण कदली भी होती है। यहाँ पर बात दिखलाई गई है क्रीड़ा शैलः क्रीड़ार्थः शैलः ब्रैकेट मध्यम पद लोपी समास ब्रैकेट बंद उपशांत स्फुरित तड़ितम स्फुरिताः तड़ितो यस्य सः स्फुरितम् तड़ितम् उपान्तेषु स्फुरित तड़ितम् सप्तमी तत्पुरुष प्रेक्ष्य प्रौपसर्ग इक्ष धातु कत्वा प्रत्यय ब्रैकेट लेप मद्गेहिन्याः गेयम् अस्ति यस्याः सा गेहिनी गेह प्लस हिनी प्रत्यय प्लस गीत मन गेहिनी तस्याः तमयेव एव से तीन प्रकार के व्यवच्छेद समझे जाते हैं। अयोग्य व्यवच्छेदक अन्य योग व्यवच्छेदक और अत्यंता योग व्यवच्छेदक। यहाँ पर अन्य योग व्यवच्छेदक अर्थ समझा जाता है, अर्थात उसी पर्वत को दूसरे को नहीं। सदृश वस्तु का अनुभव होने से अभिष्ट वस्तु का स्मरण होता है। इस श्लोक में मेघ को इंद्र नील के साथ और बिजली का कनक कदली के साथ सादृश्य होने से स्मरणालंकार है, जैसा कि साहित्य दर्पण में लिखा है, सदृशानुभवाद्यस्तु स्मृति स्मरणम उच्यते, अर्थात सादृश्य पदार्थ के अनुभव से किसी वस्तु का स्मरण होता जहाँ होता है उसे स्मरण अलंकार कहते हैं। निरुक्त नामक किसी टीका के रचयिता ने यहाँ पर त्वाम तमेव स्मरामि इसी शब्द योजना कर मैं तुमको उसी पर्वत को स्मरण करता हूँ, इस प्रकार मेघ से शैलत्व का आरोप कर रूपक अलंकार माना है। महोपाध्याय मल्लिनाथ जी ने इसका खंडन किया है, क्योंकि पूर्ववर्ती मेघ में पर्वत के आकार का आरोप अनुभवात्मक है, अतः उसमें स्मृति शब्द का प्रयोग अनुचित है। पर्वत्व भान भावना की स्मृति भी उत्पन्न नहीं है, इसलिए ऐसे स्थल पर आरोप कर रूपक मनन मानने से स्मरण अलंकार निरवकाश होगा, अतः यहाँ स्मरण अलंकार ही मानना चाहिए। और इसी के समान इसमें उदात अलंकार भी है, अतः दो अलंकारों के अंगांगी भाव से संकर अलंकार होता है।